blessed Savior. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Antai Majharahiya Jai Jara Marananta Poradha Samsar Layatamaham Jina Chinna Jinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीर्ष आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक जो उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति में भुजगार आदि की बात देख रहे हैं, उसमें नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय अनुगम उसका अधिकार अब शुरू हो रहा है। हम आए हैं पृष्ठ संख्या 51 पर, 51। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग कहेंगे तो पहले वो बताएंगे कि कौन कौन सी विभक्तियां नियम से है। कल हमने 50 पृष्ठ पर नीचे देखा था, ये 94 लिखा है ना, उसके ऊपर का सूत्र मिला ना, मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की, भुजगार स्थिति विभक्ति वाले, अल्पतर वाले और अवस्थित वाले, वो नियम से है। सभी जीवों में कोई ना कोई उसको करने वाले तो होंगे। फिर कहते हैं अनंतानुबंधी का जो अवक्तव्य है, यानी विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाले, तो हर समय होंगे ही, ऐसा नहीं है, तो वो भजनीय है, क्योंकि उनका निरंतर है, हर समय ऐसा कोई जीव नहीं है कि हर समय वो कोई ना कोई जीव विसर्जन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में कभी ऐसा भी होगा कि किसी ने भी नहीं किया है कुछ काल के लिए, फिर दोबारा करेंगे। अब यहां हम सम्यक्त्व की बात पढ़ने जा रहे हैं 51 पृष्ठ पर। सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणम् भुजगार अवट्ठिद अवत्तव ठिदि विहत्या भजिदौवा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार होती है सम्यक्त्व ग्रहण करने के पहले समय में, अवस्थित भी तभी होती है, और अवक्तव्य उद्वेलना के बाद प्रथम उपशम करने वाला। तो हमने देखा था प्रथम ऑप्शन सम्यक हुए सांतर मार्गणा है, याद है, यहाँ जयधवला में तो 24 दिन रात का अंतर बताया, तो वो हमेशा तो नहीं होगा कोई ना कोई जीव हर समय। इसमें से किसको छोड़ा है जयाबेन, आप देखना, ये जो हमने यहाँ 3 लिखे, भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य, अल्पतर को छोड़ा, क्यों?
वो तो हमेशा रहेगा,
क्षायिक के लिए, क्षायिक के सहता ही नहीं है। हाँ,
समय दृष्टि चौथा गुणस्थ अंतर निरंतर बात है।
हाँ देखो, वो जीव सम्यक भी बना रहे या मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो सम्यक के पहले समय तो भुजगार हो सकता है, जब तक सम्यक दृष्टि रहता है तब तक भी उसकी स्थिति घटती चली जाती है, और मिथ्यात्व में आने पर भी उद्वेलना के द्वारा उसकी स्थिति घटती है, तो अल्पतर तो हमेशा ही होगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जी हमेशा ही है, और कितने ही वो जो मिथ्यात्व में आए वो तो उद्वेलना भी उनकी चलती रहेगी, तो अल्पतर भंग हमेशा ही होगा, यानी हमेशा ही उसके जीव होगे, अल्पतर वाले जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। अब यहां हम देखते हैं यानी यहाँ से पढ़ने के पहले हम थोड़ा विचार करेंगे ना, फिर आगे ये बात आती है कि अपना कुछ कहीं घोटाला हो रहा है, उसकी बात ख्याल में आती है। देखो उसका कारण बताते हैं, भजनीय क्यों है, क्योंकि निरंतर सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव नहीं पाए जाते। प्राप्त होना यानी उस सम्यक्त्व का पहला समय, वो तो हर समय नहीं पाया जाएगा। अब्बदर ठिति विहत्या नियमा अत्थि, अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है। अभी हमने देखा था ना, क्योंकि समय दृष्टि भी हमेशा ही पाए ही जाएंगे, औपशमिक वाला हो या वेदक वाला हो, तो उनके तो अल्पतर चलता ही रहेगा। मिथ्यात्व में आने पर भी उद्वेलना चलती ही रहेगी। विशेषार्थ, यहाँ पर भुजगार आदि पदों का अवलंबन लेकर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय का विचार किया जा रहा है। मोहनीय के कुल भेद 28 है, उनमें से मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद वाले नाना जीव निरंतर पाए जाते हैं। यानी कोई ना कोई जीव भुजगार करता ही रहेगा, किसी के अल्पतर हो रहा है, यानी वो तीनों ही विभक्ति वाले जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। यह स्पष्ट करना, उससे हुआ है ना, स्पष्ट हुआ है, स्पष्ट करना, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि यथासंभव मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में इनका निरंतर बंध संभव होने से ये बन जाते हैं। मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में इसलिए लिखा कि मिथ्यात्व का बंध तो मिथ्यात्व में है, अनंतानुबंधी का पहले दूसरे में है, और यथासंभव जिनका आगे तक है तो इनका निरंतर बंध है, ये बात बता रहे हैं। किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क के अवक्तव्य पद की यह स्थिति नहीं है, यानी वो निरंतर नहीं है, कारण कि जो 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव मिथ्यात्व और सांसाधन गुणस्थान में आता है, 24 की सत्ता वाला यानी जिसने विषय योजना की है, ऐसा जीव, उसी के यह पद संभव है, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं थी और फिर संयोजना हो गई, सत्ता प्राप्त हो गई।
क्या वक्तव्य खाली सासादन में ही लिया?
नहीं, दोनों वक्तव्य केवल सासादन में नहीं लेना, क्योंकि जब विसंयोजना करने वाला जो मिथ्यात्व में आता है तो भी उसकी सत्ता नहीं थी, और मिथ्यात्व में आने पर नया बंध होता है तो वहाँ सत्ता तैयार हो जाती है, तो उसके भी अवक्तव्य भंग कहेंगे। यह उदय की अकेली बात नहीं है, सत्ता की बात चल रही है, तो मिथ्यात्व में भी आ सकता है, सासाधन में भी जा सकता है, पर सासाधन में जाने वाले के लिए वो औपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ये बात है, और वेदक सम्यक दृष्टि विसंयोजना करने पर मिथ्यात्व में जाएगा, तो उसका भी अवक्तव्य कहेंगे। ऐसे जीवों का निरंतर उक्त गुणस्थानों को प्राप्त होना संभव नहीं, उसमें रहना संभव नहीं कहा, प्राप्त होना, यानी लगातार कोई सासाधन में प्राप्त होए, वो भी 24 की सत्ता वाला चाहिए, तो लगातार सासाधन को प्राप्त हो ऐसा नहीं बन सकता। हमने देखा था उसमें वो मार्गणा जो है वो सांतर मार्गणा है। कदाचित अभी नाना जीवों की बात कर रहे हैं तो वहां बता रहे हैं, कदाचित एक भी जीव उक्त गुणस्थानों को नहीं प्राप्त होता, यानी कोई भी जीव वहां नहीं है, प्राप्त होने वाला एक भी नहीं है, यानी अवक्तव्य वाला भंग वाला एक भी जीव नहीं है इस पूरे ही चारों गति में कहीं भी, ऐसे हो सकता है तो एक ये पॉसिबिलिटी बताई। और कदाचित एक जीव तथा कदाचित नाना जीव उक्त गुणस्थानों को प्राप्त होते, गुणस्थानों का हुआ है, गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं, यानी एक साथ अनेक जीव ही उसमें प्राप्त हो गए, तो एक साथ अनेक जीवों ने अवक्तव्य वाला भंग किया, इसलिए अनंतानुबंधी के अवक्तव्य पद वाले भजनीय कहे हैं, भजनीय यानी ऑप्शनल है, तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर पद वाले जीव तो सदा पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रकृतियों की सत्ता वाले सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, सत्ता है तो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उनका तो निरंतर वो अल्पतर भंग ही चलता है, उनका निरंतर सद्भाव पाया जाता है। इन्हें 28 की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि जीव भी निरंतर पाए जाएंगे, और सम्यक दृष्टि जीव तो निरंतर होते ही है। इसलिए इनके सत्ता वाले निरंतर होते हैं, और उनके एकमात्र अल्पतर पद ही होता है, क्योंकि हमने देखा था इसमें जो भुजगार या अवस्थित है वो मिथ्यात्व में से सम्यक प्राप्ति के पहले समय में होता है, बाकी अदरवाइज उनका तो अल्पतर भंग ही चलता है, अल्पतर स्थिति विभक्ति होती है, अल्पतर पद ही होता है। पर इन प्रकृतियों के शेष पद भजनीय हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में अभी हमने देखा अल्पतर है वो निरंतर है। मयंक भाई, शेष पद में कौन कौन से लेना? अल्पतर एक देख लिया हमने, हाँ, भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य, क्योंकि भुजगार और अवस्थित वो सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में होता है। उसमें भी हमने देखा था ना, 28 की सत्ता वाला जीव चाहिए उसके हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं शेष पद भजनीय, क्योंकि शेष पद जो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं उनके ही प्रथम समय में संभव है, भले वो भुजगार हो, अवस्थित हो या अवक्तव्य हो। अवक्तव्य है वो 26 की सत्ता वाला सम्यक तो प्राप्त करता है तो अवक्तव्य हो जाएगा, 28 की सत्ता वाला है और वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में उसमें कितना डिफरेंस है, तो कभी भुजगार भी हो सकता है, कभी अवस्थित भी हो सकता है। और ऐसे जीव निरंतर नहीं पाए जाते, इन्हें सम्यक तो प्राप्ति का पहला समय, हर समय ये बात बने ऐसा तो नहीं होता। अतः इन प्रकृतियों के यानी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य पद वाले जीव भजनीय कहे हैं। अवस्थित यानी हमने देखा था ना, जब मिथ्यात्व के कितने निषेक है, एक ही निषेक ज्यादा है, सम्यक और सम्यक प्रकृति से एक निषेक मिथ्यात्व का ज्यादा है, और उसका उदय रूप निषेक भी नीचे है, और वो उदय उसका लास्ट समय में हो चुका, अब वह जीव सम्यक दृष्टि हुआ, अब सम्यक प्रकृति का उदय चलेगा और मिथ्यात्व वो सम्यक प्रकृति में संक्रमित होगा। यानी वो उदय रूप निषेक है ना उसका, वो तो है भी सत्ता में, तो मान लेते हैं यहाँ मिथ्यात्व अवस्था में उसके 4 निषेक थे और तब मिथ्यात्व के निषेक 6 थे, एक ऊपर ज्यादा था, एक नीचे ज्यादा था उदय रूप, वहां काल की अपेक्षा भी घटित करके दिखाया था उन्होंने और निषेक की अपेक्षा। यह है सम्यक, सम्यक तो क्या, सम्यक मिथ्यात्व के निषेक, और यह है मिथ्यात्व के निषेक। मिथ्या दृष्टि था तो यह उदय रूप निषेक था, अब ये तो उसका चला गया, अभी उदय नहीं रहा सम्यक तो हुआ तो उदय अभी इसका चलेगा, सम्यक तो का इसका उदय नहीं होगा, और यहाँ पर जो था वो इस रूप हो जाएगा, और ये तो उदय यहाँ तो खिर गया था ना, वो उस रूप टर्न होके खिर गया था अन्य रूप, तो उसका अवस्थित ही रह जाता है।
एक
निषेक ज्यादा था, निषेक एक ज्यादा था तो अवस्थित हो जाता है, और 2 निषेक से ज्यादा होते हैं तो भुजगार हो जाता है। अभी हम नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार यति ऋषभ आचार्य के देशामर्शक सूत्र के अर्थ का कथन करके, ये देशामर्शक का अर्थ याद है, हाँ हाँ थोड़ा कहा है उसमें से, बहुत अर्थ गर्भित है उसमें, उसको देशामर्शक कहते हैं। थोड़ू लख्यू घणू जानजो, तो उसके अर्थ का कथन करके अब यति ऋषभ आचार्य के द्वारा सूचित किए गए अर्थ की उच्चारणा का कथन करते हैं। पहले तो उसका डायरेक्ट देशामर्शक का अर्थ बताया, अभी उस पर जो उच्चारणा है उसका अर्थ बता रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीव नियम से हैं कहा, यानी अनेक जीव हो गए सभी में, भुजगार करने वाले भी, अल्पतर वाले भी और अवस्थित वाले भी। अवक्तव्य का क्या होगा उनमें? होता ही नहीं, होता ही नहीं, मिथ्यात्व है ना, एक बार क्षय होने के बाद फिर दोबारा उत्पन्न हो ये बनता ही नहीं, वो तो अनंत अनुबंधी में और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में होता है। अब अनंत अनुबंधी चतुष्क की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है, जैसे अन्य 12 कषायों के नियम से है कहा, वैसे अनंत अनुबंधी के बारे में भी ये 3 जो है वो तो नियम से है, परंतु अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले भजनीय है। कदाचित ये भुजगार आदि विभक्ति वाले बहुत जीव होते हैं, अब उसमें ये भजनीय है तो उसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पहला तो कभी हो गया ही नहीं ऐसा है, किसी को भी है ही नहीं ऐसा अवक्तव्य वाला होगा। कभी कभी क्या होगा, भुजगार आदि विभक्ति वाले बहुत जीव होते हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं, और अवक्तव्य विभक्ति वाला एक जीव होता है। ये कॉम्बिनेशन नाना जीवों की अपेक्षा, पहला कॉम्बिनेशन क्या कि भुजगार आदि है, अवक्तव्य वाला एक भी नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन, भुजगार आदि तो हमेशा ही अनेक हो गए ही और अवक्तव्य वाला एक जीव होगा। कदाचित ये भुजगार आदि विभक्ति वाले नाना जीव होते हैं और अवक्तव्य विभक्ति वाले नाना जीव होते हैं, यानी वो भी एक से ज्यादा है, नाना जीव का अर्थ होता है वो भी ज्यादा है। फुल स्टॉप क्लियर करना, जरा स्पष्ट है। अब सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है, यानी वो हमेशा ही होगे और बहुत होगे, तथा शेष पद वाले जीव भजनीय है। उसमें भी शेष जो है वो सब एक साथ हो गया ऐसा भी नहीं है, भुजगार होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं भी होगा, होगा तो एक होगा, हो गए तो अनेक भी हो गए, इस तरह से उसमें कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। इसी प्रकार अब ये जो बात बताई उन्होंने, यही बात तिर्यंच कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेद वाले, ये कुछ ख्याल में आता है कि ये किसकी बात चल रही होगी? हाँ, जहाँ अनंत जीव और एकेंद्रिय आदि बनते हैं उनकी अपेक्षा है यहाँ पर, क्यों? वे तो हमेशा ही हो गए भुजगार अल्पतर, कुछ ना कुछ अनंत जीव है तो उसमें चलता रहता है। तो यहाँ लिया तिर्यंच, तिर्यंचों में तो वो निगोद वगैरह होते तो अनंत जीव घटित होते हैं, कायोगी औदारिक कायोगी, नपुसक वेद वाले, क्रोधादि 4 कषाय वाले, असंयत अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, नील वाले के बाद कॉमा लगाना, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। भव्य को इसलिए लिया कि ये जो कथन है अनंतानुबंधी का, जो अवक्तव्य भंग बनता है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बातें बनती है, ये सारा ही कथन भव्यों में ही लागू होगा। अब हमें तो बस 26 प्रकृतियों की बात करेंगे और उसमें सभी भुजगार अवस्थित और अल्पतर है ऐसा कहेंगे, ख्याल में आती बात? अभव्यों में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है और उसमें अनंत जीव है, तो उसमें भुजगार भी होंगे, अल्पतर भी होंगे और अवस्थित भी होंगे, हमेशा ही सभी जीव होंगे। विशेषार्थ मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय, इन 22 प्रकृतियों के ये 6 छोड़े ना, अनंतानुबंधी और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर, इनके भुजगार अल्पतर और अवस्थित ये 3 पद होते हैं जो सर्वदा पाए जाते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा एक ध्रुव भंग ही होता है, इसको ध्रुव भंग कहा, जो हमेशा ही होते हैं उसको ध्रुव भंग कहते हैं, और जो ध्रुव नहीं है उसको भजनीय कहते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क के 4 पद हैं, जिनमें भुजगार अल्पतर और अवस्थित ये 3 पद ध्रुव है और अवक्तव्य पद अध्रुव है। अवक्तव्य पद वाला कदाचित एक जीव होता है और कदाचित नाना। अब इन 2 भंगों में ध्रुव भंग और मिला दिया जाता है तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा कुल 3 भंग प्राप्त होते हैं। यानी पहला अकेला ध्रुव लिया, वहां अनंतानुबंधी का अवक्तव्य था ही नहीं, फिर ध्रुव तो अनेक ही रखने हमेशा, अवक्तव्य वाला एक जीव, फिर ध्रुव के साथ अवक्तव्य वाले अनेक जीव। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के 4 पद है, जिनमें भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य ये 3 भजनीय, यहाँ भजनीय में 3 है और एक अल्पतर ध्रुव है। अल्पतर वाला जो भंग है वो हमेशा ही पाया जाएगा, अतः यहाँ कुल 27 भंग होते हैं। पहले याद होगा हमने जब मूल प्रकृति में हमने देखा था तो कितने भजनीय हैं, तो 3 है भजनीय, तो 3 त्रिक और 9 त्रिक 27, 3 को 3 बार लिखा था और आपस में गुणा किया था। ये जहां भजनीय और ध्रुव वाले का कॉम्बिनेशन होता है वो कितने होते हैं इसको हमने विस्तार से देखा था वहां पर, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखते हैं, क्योंकि एक और नाना जीवों की अपेक्षा 3 भजनीय पदों के 26 भंग और उनके उनमें एक ध्रुव भंग के मिलाने पर कुल 27 भंग होते हैं। ध्रुव भंग कौन सा है? अल्पतर हमेशा होते वो ध्रुव भंग है, तो अल्पतर के साथ भुजगार लगाना एक है और अनेक है, तीनों भी नहीं है वो तो लगा लेंगे अलग से, तो फिर हर एक को अलग अलग रखो। फिर भुजगार और अवस्थित वाले है, दो दो के कॉम्बिनेशन ले लो, और फिर तीनों है इस तरह से, तो वो जो विस्तार से उसको घटित करेंगे तो इतने टोटल भंग हो सकते हैं। तिर्यंच आदि मूल में गिनाई गई कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें यह ओघ प्ररूपणा घटित हो जाती है, अतः उनके कथन को ओघ के समान कहा है। अब जिन मार्गणाओं में घटित नहीं होता है वहां क्या बात है वो अभी आदेश में हम देखेंगे। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर और अवस्थित स्थिति वक्ति वाले जीव नियम से हैं।
जैसे जो हमने 27 भंग देखे हैं उसमें जो अल्पतर के सिवा जो 3 है उसकी भी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ना?
हाँ, वहाँ जो अभी हमने ऊपर जो देखा था सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में 3 भजनीय बताए थे और एक ध्रुव बताया था,
तो अल्पतर के सिवा जो 3 है वचनीय
उसमें भी कॉम्बिनेशन वही बताए ना। देखो वो ध्रुव के साथ अगर अकेले भुजगार को लगाना है तो उसके 3 हो जाएंगे, अकेले अल्पतर के 3 हो जाएंगे और अकेले अवक्तव्य के 3 हो जाएंगे,
और आपस आपस में भी होगा,
फिर उसकी कॉम्बिनेशंस लेना, एक ध्रुव और उसके साथ भुजगार कितने और अवस्थित कितने। उसमें तो और ऐसा भी हो सकता है एक भुजगार है और एक अवस्थित है, एक भुजगार है, अनेक अवस्थित है, अनेक भुजगार है, एक अवस्थित है, और अनेक भुजगार के साथ अनेक अवस्थित है। अब भुजगार और अवक्तव्य को लगाना, ऐसे हर एक में वो कॉम्बिनेशंस लगाना, और फिर तीनों को एक साथ लेना। याद है हमने टेबल भी देखे थे पहले, अब यह हम नारकियों में देख रहे हैं। क्या बताया उन्होंने कि मिथ्या तो 12 कषाय और 9 कषाय की अल्पतर और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीव नियम से है। ऐसा क्यों कहते नियम से है? अल्पतर वाले हमेशा ही पाए जाएंगे, ऐसा क्यों कहा?
सम्यक दृष्टि से तो
हाँ, क्षायिक की अपेक्षा, और जो साधारण सम्यक दृष्टि है उनके भी अल्पतर तो चलेगा ही। क्या लती ना, आपने तो बता दिया जो सम्यक दृष्टि वहां हमेशा ही पाए जाएंगे, सभी नरकों में असंख्या जीव सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है उनके तो अल्पतर चलता ही रहेगा, तो अल्पतर वाला भी हमेशा है।
बुझाकर वाला छोड़ा है?
हाँ, बुझाकर वाला छोड़ा है। देखो 12 कषाय लिए और 9 कषाय, अल्पतर और अवस्थित। अवस्थित कब होता है? जब उतना का उतना बंद करेगा तो अवस्थित कहलाएगा। यहाँ सम्यक की बात नहीं, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित वो सम्यक प्राप्ति के पहले समय में होता है, यह मिथ्यात्व का अवस्थित कह रहे हैं। तो मिथ्यात्व का जितना पूर्व समय में बंद है उतना ही लगातार अंतर्मूर्त तक कर सकता है, तो वो सारे ही अवस्थित कहलाएंगे। तो ये तो इतने तो जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। इनके भुजगार पद वाले जीव भजनीय हैं। नारकियों में भुजगार कब कब हो सकता है? तो पहले नरक में तो असंगी में से आया हुआ, फिर मिश्र अवस्था में से पर्याप्त होने वाला, और उनके छोड़ भी देंगे तो सभी नरकों में भुजगार तो होता ही है ना, कि पहले पहले अल्प बंद कर रहा था, अभी ज्यादा बंद कर रहा है, तो भुजगार हो गए। तो भुजगार वाले जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। सॉरी, भुजगार वाले जीव भजनीय हमेशा नहीं, भजनीय है, क्योंकि लगातार हर समय में वो नहीं पाए जाते हैं। अब कहते कदाचित ये नाना जीव है। कौन से ये नाना जीव है? नहीं, अल्पतर और अवस्थित वाले नाना है, वो तो हमेशा ही नाना होते हैं। और ये कदाचित है ना, ये कॉम्बिनेशन के लिए लिया, कदाचित आगे पढ़ना। एक तो ध्रुव भंग है यानी नाना जीव है, और एक भुजगार स्थिति विभक्ति वाला जीव है, यानी अल्पतर और अवस्थित हमेशा ही पाए जाएंगे। और वो कितने हैं? तो अनेक है, नाना है, और उसके साथ भुजगार वाला एक पाया जाएगा। कदाचित ये नाना जीव है और नाना भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव है, और एक तीसरा भंग कैसा देखा हमने, ये नाना है और भुजगार वाला है ही नहीं। अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है। जैसे हमने 12 कषायों के लिए अल्पतर और अवस्थित वाले नियम से है देखा है, वैसे ये भी जीव नियम से है। तथा
नहीं,
असंख्यात होते हुए भी जरूरी नहीं कि वो तो भुजगार करे। अवस्थित तो हमेशा पाए जाएंगे, जो है उससे अधिक स्थिति बांधने वाले जीव वो तो भजनीय है, वो निरंतर पाए जाएंगे ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि भुजगार एक समय के लिए होगा ना, और फिर बाद में उसको उतना ही होता रहेगा तो हम उसको अवस्थित कहेंगे, और भुजगार के बाद अल्पतर होगा तो हम उसको अल्पतर कहेंगे।
क्योंकि जिनकी संख्या की अपेक्षा देखा था हमने, श्रेणी के असंख्या जगत पत्र के असंख्या पे बात करना।
हाँ, वहाँ असंख्या जीव होने पर भी उसमें बहुतांश तो वो तो अल्पतर वाले तो हमेशा ही पाए जाते हैं, अवस्थित वाले भी होते हैं, परंतु भुजगार वाले नहीं होते। यानी बीच में लगातार यानी हर समय होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अनंत में तो हुआ था, अब यहाँ नहीं हुआ। अब क्या कहते हैं, अनंत अनुबंधी चतुष्क के अल्पतर अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है तथा शेष पद भजनीय है। जैसे हमने अन्य में भुजगार भजनीय देखा था, इनमें भुजगार भी और कौन सा रह गया, अवक्तव्य, वो दोनों ही भजनीय है। वैसे अवक्तव्य पद हमने चारों गति की अपेक्षा भी भजनीय देखा था, अनंतानुबंधी का ओघ की अपेक्षा अवक्तव्य तो भजनीय देखा था, तो यहाँ अकेले नारकी में भी भजनीय ही होगा, क्योंकि हर समय कोई विसंयोजना वाला और फिर संयोजना वाला नहीं पाया जाएगा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। ओघ के समान याद है क्या क्या था? हाँ जय बेन, यानी अल्पतर हमेशा ही होगा, बाकी तीन जो है वो भजनीय है। इसी प्रकार सब नारकी, ये जो हमने कथन देखा है वो सभी नारकियों में लागू होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच, देखो सभी सामान्य तिर्यंचों को तो ओघ के समान लिया था, यानी वो तो भुजगार अवस्थित और अल्पतर तो हमेशा ही पाए जाएंगे ऐसा लिखा था, परंतु पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ये बात नहीं है, उनकी संख्या तो असंख्यात है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, सामान्य मनुष्य, ये सामान्य मनुष्य को भी लेंगे, वो भी असंख्याती है ना, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, सामान्य देव, भवन वासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, सहस्रार तक की ले, ऊपर तो अल्पतर तो हमेशा पाए ही जाएंगे ऐसी बात है ना, वहां बुझेगा नहीं होगा। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, कौमा लगाना, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैकृत काय योगी, देखो औदारिक काय योगी वालों को वहां डाला था ओग के समान अनंत में, ये वैकृत काय योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, वहां हमने नपुसक वेद वाले को लिया था, चक्षु दर्शन वाले, वहां अचक्षु दर्शन वालों को रखा था, पीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले, वहां अशुभ तीन लिए थे, शुक्ल वालों को यहां से भी छुट्टी की है, उनमें तो वो अल्पतर वाला ही पाया जाएगा। और संगी जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी असंगी तो सारे अनंत हो जाएंगे। असंगी जब कहते हैं मार्गणा में असंगी, तो एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सब आ गए। विशेषार्थ बता रहे, देखो नरक में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के दो पद ध्रुव, कौन से दो देखे हमने, अल्पतर और अवस्थित, और एक पद भजनीय बतलाया है, ये भुजगार जो है वो भजनीय बतलाया, अतः इनके ध्रुव भंग के साथ तीन भंग प्राप्त होते हैं। दोनों को मिलकर ध्रुव कह दिया ना, तो भजनीय एक ही रह गया, तो एक भजनीय तो उसके तीन भंग हो गए। अनंतानुबंधी चतुष्क के चार पदों में से अल्पतर और अवस्थित ये दो पद ध्रुव तथा भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद भजनीय बतलाए हैं, इसलिए इनके 9 भंग प्राप्त होते हैं। हमने देखे थे जितने भजनीय है उतनी बार 3 लिखकर आपस में गुणा करो, तो यहाँ भजनीय कौन कौन से, भुजगार और अवक्तव्य है, तो 2 है ना, 2 पद भजनीय है, तो 2 बार 3 को लिखो, 3 और 3 तो 3×3 9, तो 9 भंग हो जाएंगे टोटल। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के जिस प्रकार ओग से 27 भंग बतलाए हैं आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भजनीय पद कौन कौन से थे, अल्पतर तो हमेशा पाया जाएगा, एक अल्पतर वो ध्रुव है, और बाकी भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य है वो भजनीय है, तो 3 हुए ना भजनीय, तो 3 बार 3 लिखो, और आपस में गुणा करो। अभी उसके डिटेल अभी अपने याद नहीं है ना, कैसे उन्होंने निकाल के दिखाए थे, इतना ही याद रखे तो भी बहुत है। मूल में सब नारकी आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है। हमने देखे ना, सामान्य मनुष्य देखे, देवों में वनवासी से लेकर सहस्रार तक देखे, इनमें भी यही बात बनती है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में, अब यहाँ अपर्याप्त लिए क्योंकि यहाँ वो अनंतानुबंधी का अवक्तव्य नहीं बनेगा और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भी अवक्तव्य नहीं बनेगा, तो इसलिए कुछ कथन में डिफरेंस है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में मिथ्यात्व 16 कषाय सभी एक साथ लिए कषाय यहाँ पर, और 9-9 कषायों की अपेक्षा नारकियों के समान भंग है। नारकियों के समान इन्हें अल्पतर और अवस्थित हमेशा ही होगे, किंतु इतनी विशेषता है इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति नहीं है। देखो अल्पतर हमेशा कैसे होते हैं, क्योंकि जो अधिक स्थिति के साथ इसमें आए हैं तो लगातार उसकी स्थिति घटती चली जाती है, तो भुजगार वाले कभी कभी होंगे, कोई कोई जी होंगे, और अवस्थित और अल्पतर तो पाए जाएंगे हमेशा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है। इसी प्रकार सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और विभंग ज्ञानी जीवों के जानना चाहिए। अल्पतर वाले हमेशा ही पाए जाएंगे, यानी कोई ना कोई जीव उसमें पाए जाएंगे।
अपर्याप्त का बंध चौथे गुण स्थान में होता नहीं है,
अपर्याप्त नाम कर्म
का बंध चौथे गुण स्थान में होता,
हाँ चौथे गुण स्थान में नहीं होता। हाँ
मिथ्यात्व में जाके पीछे बंद करेगा और पीछे इसमें उत्पन्न हो गए तो भी वो निरंतर पाए जाते हैं।
देखो ऐसा है ना, जीव मिथ्यात्व में गया है तो मिथ्यात्व में जाने के बाद उसकी उद्वेलना होने के लिए पल्य का असंख्यात्व भाग लगता है, तो उतने काल में वो कितने भव उसके हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसी भव से सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाके उसने अपर्याप्त संबंधी आयु बांधी है और वहां चला गया, और हो सकता है कि वो सम्यक्त्व के साथ मान लेते देव में गया, वहां मिथ्या दृष्टि हुआ और फिर इसमें आ गया है, ऐसा भी हो सकता है ना। यानी उद्वेलना पूरी होने के पहले इनमें आ गया है तो उसमें तो उसके लगातार घटता चला जाता है, तो अल्पतर तो हमेशा ही पाया जाएगा। यानी यो इनकी सत्ता वाले जीव हमेशा ही रहेंगे, ये बात सिद्ध होती है। जब जब अपर्याप्त कहा है, ये लब्धि अपर्याप्त की ही बात है। हाँ विशेषार्थ पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य भंग नहीं बनता, अतः इनके मिथ्यात्व 16 कषाय और 9-9 कषाय इन सब के भुजगार अल्पतर और अवस्थित ये तीन पद ही होते हैं। अरे यहाँ भुजगार वाले वो भजनीय बताया था ना, नारकियों के समान बताया था उन्होंने। हाँ आगे लिखा है तीन पद पॉसिबल है, ये बता रहे हमेशा होते ये नहीं कहा। इनमें से दो पद ध्रुव और एक पद भुजगार पद भजनीय है, अतः कुल तीन भंग प्राप्त होते हैं। कौन सा भजनीय है इसमें? भुजगार अल्पतर और अवस्थित हमेशा ही पाए जाएंगे। यहाँ नारकियों के समान कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार नारकियों के एक भुजगार पद भजनीय बतलाया, उसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्तकों के भी जानना चाहिए। तथा सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व की अपेक्षा इनके कल्पतर पद ही पाया जाता है जो ध्रुव है। अतः इनकी अपेक्षा एक ध्रुव भंग ही प्राप्त होता है। सब विकलेंद्रिय आदि और जितनी मार्गणाएं मूल में गिनाई है उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है। अतः उनके कथन को पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्तकों के समान कहा। क्या कहना चाहते? देखो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के लिए अपर्याप्त जीव लिए ना अभी, तो एकेंद्रियों में तो उन्होंने बादर पर्याप्त वगैरह लिए थे, बाकी तो विकलेंद्रिय और पंचेन्द्रिय, विकलेंद्रिय तो सभी लिए और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त लिए। तो इन सभी में सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव है। इन्हें सम्यक्त्व से गिरकर इन सभी पर्याय में जन्मने वाले जीव लिए यहाँ पर, और उनमें एक अल्पतर भंग पाया जाएगा। सूक्ष्म में निरंतर नहीं पाए जाएंगे, इसलिए उनको छोड़ा है। मनुष्य अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों के सब पद भजनीय हैं। मनुष्य अपर्याप्त लिया, क्यों भजनीय बताया? हाँ, सांतर मार्गणा है, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्त ही भजनीय है। वो कभी होगे कभी नहीं भी होगे। तो ये 26 प्रकृतियों के सभी पद भजनीय हैं। भंग 26 ही होते हैं क्योंकि यहाँ ध्रुव पद का अभाव है। क्या कहते हैं? सभी के सभी भजनीय बताएं। कितने कितने हो सकेंगे इसमें? अनंतानुबंधी का अवक्तव्य नहीं बनेगा, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य नहीं बनेगा। भुजगार और अवस्थित भी,
भुजगार और
अवस्थित भी नहीं बनेगा। कौन सा बन सकता है?
अल्पतर वाला।
अल्पतर वो भले अन्यत्र, हमने अन्यत्र उसको ध्रुव कहा था, परंतु यहाँ वह भी भुजनीय कहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्त ही नहीं होगे तो उसमें सम्यक्त्व के अल्पतर वाले कैसे होगे? वो मार्गणा ही शांत रहते, इसलिए वो जहाँ अन्यत्र जो ध्रुव भंग है वो भी यहाँ सभी अध्रुव कहलाएंगे।
ये तिर्यंच अपर्याप्त तो निरंतर मारना है, पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तो भी निरंतर मारना है।
पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त निरंतर मारना है।
नहीं, ये तो पंचेंद्रिय की बात है ना, इसलिए
नहीं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तो जो है, लब्धि अपर्याप्त तो निरंतर पाए जाते, हमने देखे थे। ये मनुष्य अपर्याप्त ही निरंतर नहीं होते, वो सांतर मार्गना
वो भी असंख्या है।
कौन सी? हाँ, मनुष्य अपर्याप्त हमेशा ही नहीं पाए जाएंगे, बीच में उसमें पल्ले के असंख्यात भाग जितना लंबा अंतर भी पड़ सकता है कि एक भी जीव मनुष्य अपर्याप्त नहीं हो।
ये मनुष्य अपर्याप्त गति, अरे ये नाम कर्म खाली मनुष्य ही बांधते हैं कि
नहीं, नहीं नहीं नहीं, मनुष्य अपर्याप्त ये जो है वो तो तिर्यंच और मनुष्य बांधेंगे। हाँ, वायु का एक अग्नि का एक में से नहीं आएंगे, वो मनुष्य गति नहीं बांधते, मैंने मनुष्य आयु बांधते नहीं है। देव और तिर्यंच अपर्याप्त नहीं बांध, देव और नारकी अपर्याप्त नहीं बांधते, अपर्याप्त की
तो नहीं,
अपर्याप्त की नहीं बांधते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच, उसमें भी तिर्यंचों में अग्नि का एक और वायु का एक को छोड़ना, तो बाकी जीव तो बांध सकते हैं। इसलिए यहां कहा कि सभी पद भजनीय हैं। क्योंकि यहाँ ध्रुवपद का अभाव है, क्योंकि मार्गणा ही सांतर मार्गणा है। अब आगे पढ़ेंगे। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर पद भजनीय है, उसके लिए भी वही कारण है। भंग दो होते हैं क्योंकि ध्रुवपद का अभाव है। जब भजनीय कहते हैं तो भंग दो हुए, कैसे? नहीं नहीं, ऐसा लेना कि अल्पतर भजनीय है और उसमें दो भंग हो गए, कैसा होगा? तो एक होगा और या दो हो, अधिक हो गए, एक होगा या अधिक हो गए, ये दो ही भंग हो गए यहाँ पर। देखो, मनुष्य अपर्याप्त में कौन कौन से भंग हो गए वो अवक्तव्य वाला नहीं होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं अन्य में? अभी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात छोड़ो, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ दो।
हाँ,
कितनी प्रकृतियां रही? 26। तो 26 प्रकृतियों में कितने भंग हो सकते हैं? अवक्तव्य तो नहीं होता है। अनंतानुबंधी में जो होता हो सकता था वो भी नहीं होता है। तो सभी प्रकृतियों में कौन से हो सकते हैं? भुजगार हो सकेगा, अवस्थित हो सकेगा और अल्पतर हो सकेगा, परंतु तीनों ही भजनीय हैं। क्यों? मार्गणा सांतर है, इसलिए वो ध्रुवपद वाला वहां नहीं होगा, ध्रुवपद वाला भंग वहां नहीं पाया जाएगा। ध्रुवपद के बिना उनका आपस में कॉम्बिनेशन करो, हर एक में एक और अनेक लिखो और फिर उसमें
सम्यक मिथ्यात्व में तो एक अनेक नहीं हो गया। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला है उसको सम्यक्त्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अल्पतर में, और सम्यक्त्व की सत्ता वाला को दोनों को
नहीं, उनको अलग अलग लेना है। उसके वो तो भजनीय होते ना, भंग दो ही होते, या तो एक जीव होगा या अनेक जीव होगे, इतना ही लेना उसमें।
यहाँ पे बल ज्यादा नहीं हो जाएंगे कि तीसरा पग ऐसा भी हो जाएगा ना, सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर कर रहा है, सम्यक्त्व का हो गया।
तो उसमें दोनों को अलग अलग लगाओ ना, एक एक प्रकृति को अलग लगा। हाँ, एक एक प्रकृति उसके कॉम्बिनेशन में नहीं लेना, एक एक प्रकृति को अलग लगा। सम्यक्त्व का या तो एक होगा या अनेक हो गए या नहीं भी हो गए, यानी मार्गणा ही नहीं होगी, ऐसा भी होगा ना। देखो देखो, 26 है, 26 उनका ऐसा प्रश्न है, मनुष्य अपर्याप्तों में 26 कैसे बताए? तो 26 प्रकृतियां हैं, है ना, और कभी वो मार्गणा होगी कभी नहीं भी होगी, और जब है तो उसमें वो सभी पद जो है, इसीलिए उसको भजनीय कहा, इसीलिए भजनीय कहा। और भंग भी 26 ही होते हैं क्योंकि यहाँ ध्रुवपद का अभाव है। जब ध्रुवपद होता है साथ में तो उसके साथ कॉम्बिनेशन लगाते हैं। देखो विशेषार्थ में देखेंगे हम, यहाँ का लास्ट लाइन इसकी पढ़ेंगे। इसी प्रकार जैसे मनुष्य अपर्याप्तकों में देखा, उसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि ये भी सांतर मार्गणा है। हाँ, विशेषार्थ, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य यह सांतर मार्गणा है, अतः इसमें 26 प्रकृतियों के तीनों पद भजनीय हैं। तीनों लिखे न, अवक्तव्य को छोड़कर, जिनके कुल भंग 26 होते हैं। यहां ध्रुवपद का अभाव होने से ध्रुव भंग का निषेध किया है। यद्यपि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का यहाँ एक अल्पतर पद ही है, फिर भी सांतर मार्गणा के कारण वह भी भजनीय है। अतः उनके एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा दो भंगक है। यहाँ भी ध्रुव पद का अभाव होने से ध्रुव भंग का निषेध किया। वैकृत मिश्र काय योग यह भी सांतर मार्गणा है और इसमें लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के समान सब प्रकृतियों के पद तथा भंग बन जाते हैं, अतः इनके कथन को लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के समान कहा।
अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि वहाँ पे जिसने सम्यक्त्व के सत्ता का नाश किया है उसके सम्यक मिथ्यात्व के सत्ता पश्चात में नाश होती है।
हाँ।
तो वहाँ पे सम्यक्त्व की अल्पतर नहीं और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर है ऐसा जीव भी है और
हाँ, परंतु हमने उसको भजनीय में ही लिया। जैसे सम्यक्त्व का आपका कहना एक भी जीव नहीं हो ऐसा कहना है।
हाँ।
तो हमने मार्गणा भी नहीं है ऐसा भी लिया था तो उसमें वो भी इंक्लूड हो ही जाएगा। हमने क्या कहा था
मार्गना नहीं लिए तो
वार्गम
दोनों नहीं है ऐसा बताया। अभी यहाँ पे एक की सत्ता बन जाती है क्योंकि
अब दोनों का कॉम्बिनेशन मत लेना। प्रत्येक प्रकृति के अलग भंग ले लो।
नहीं, हमने ऊपर जो 26 भंग बताए वो तीनों के कॉम्बिनेशन लिए।
वहाँ कॉम्बिनेशन कहाँ लिए? मिथ्यात्व का अलग बताया, हर एक कषाय का अलग बताया, 26 के आपस में कॉम्बिनेशन नहीं लिए, वो सन्निकर्ष में आ जाते हैं। वैसा नहीं लेना यहाँ पर। हर एक प्रकृति के अपने अपने भंग कितने बनते हैं ऐसा लेना है। उनका नाम भले एक साथ लिया है उसके आपस में कॉम्बिनेशन नहीं लगाने। देखो अभी हम देवों के आनंद से लेकर देखेंगे ऊपर। सहस्रार तक के तो हमने देखा था जो सामान्य जैसे होता है नारकी के समान देखा था ना। नारकी के समान में भवनवासी से लेकर सहस्रार तक के वो समानता देखी थी हमने। अब यहाँ आनत से लेकर ऊपर देखेंगे क्योंकि वहां तो हमने भुजगार अवस्थित अल्पतर सब लिए थे मिथ्यात्व के। अब यहाँ क्या विशेषता है? आनत अल्पतर होते आनत कल्प से लेकर उपरीम गिरवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से हैं। अनंतानुबंधी के भी अल्पतर होगे ही होगे, उनके साथ साथ अवक्तव्य वाले भी होगे। अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से हैं, ये ध्रुव होगा। और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव भजनीय हैं, तो भजनीय एक हुआ तो भंग कितने हो गए?
तीन
हो जाएंगे। भंग तीन होते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कथन ओघ के समान है। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीवों में है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का याद है?
अल्पतर।
हाँ बोलो। अल्पतर
अल्पतर ही है।
अल्पतर तो हमेशा ही होगे।
हाँ।
अल्पतर हाँ, और बाकी है कि नहीं है?
बाकी भजनीय ओग के समान
है। ओग के समान है तो भजनीय में ले लेना। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीव में है। अब अनुदिश से लेकर सर्वार्थ करना स्वार्थ हुआ है। सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव नियम से है। अब उनमें अवक्तव्य वाला भंग होगा कि नहीं होगा? उसमें तो सारे समय दृष्टि है ना, तो मिथ्या तो में आकर संयोजना होना का कोई सवाल नहीं है। वैसे उद्वेलना का भी सवाल नहीं है तो फिर सम्यक तो प्राप्त करे नहीं करे उसका सवाल कहाँ आता है? मिथ्या दृष्टि है ही नहीं वहां पर। तो जितनी अभी प्रकृतियां हैं वो सब क्या हो रहा है, एकमात्र अल्पतर ही होते चला जा रहा है। इसी प्रकार अब हमेशा अल्पतर ही होता है, ऐसे और कौन सी मार्गणाएं हैं? अभी निबोधि ज्ञानी, क्षत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, यानी सम्यक तो संबंधी जितनी मार्गणाएं उसको ले लिया। यहाँ पर संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, अवधि दर्शन वाले, समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, आनंद से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों के मिथ्यात्वादी 22 प्रकृतियों का एक अल्पतर पद ही बतलाया है, अतः इनका एक ध्रुव भंग ही होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के अल्पतर और अवक्तव्य ये दो पद बतलाए हैं, इनमें से अल्पतर पद ध्रुव है और अवक्तव्य पद अध्रुव है, भजनीय है, अध्रुव यानी भजनीय है। अतः एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा इन अवक्तव्य संबंधी दो अध्रुव भंगों में एक ध्रुव भंग के मिला देने पर तीन भंग प्राप्त होते हैं, या तो एक जीव है या नाना जीव है। आनतादिक में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की प्राप्ति और सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की प्राप्ति संभव है, अतः यहाँ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के ओग के समान चारों पद और उनके 27 भंग बन जाते हैं, क्योंकि तीन भजनीय है यहाँ पर और एक ध्रुव कौन सा है? अल्पतर वाला। यही कारण है यहाँ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के भंगों को ओघ के समान कहा है। अनुदिशादिक में तो सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं और सम्यक दृष्टियों के सब प्रकृतियों का एक अल्पतर पद ही होता है, इसलिए अनुदिशादिक में सब प्रकृतियों का एक अल्पतर पद कहा है। मूल में अभिनिबोधि ज्ञानी आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी एक अल्पतर पद ही संभव है, अतः उनके कथन को अनुदिश आदि के समान कहा है। यानी जो अभिनिबोधि ज्ञानी वगैरह हमने देखा, यहाँ मनपरे ज्ञानी भी कहे और परिहार विशुद्धि संयम, सामायिक संयम, वो सभी संयम के सभी प्रकार।
ये ऊपर ये अपगत वेदी यथाकथ से सूक्ष्म संप्राय को छोड़ा है,
आपका ऐसा प्रश्न है? ऊपर अपगत वेदी यथाख्यात संयम वगैरह को छोड़ा है तो इसका उत्तर कोई देंगे क्यों छोड़ा है? हाँ भानु बेन, प्रेरणा बेन, प्रश्न ख्याल में आया? अश्विन भाई का प्रश्न है, अभी ये सम्यक तो संबंधी मार्गणाएं देखी हमने, तो वहां सामायिक सूक्ष्म सांप्राय को छोड़ा है, यथाख्यात संयत को छोड़ा है, अकषाय वाले को छोड़ा, अपगत वेद को छोड़ा, तो क्यों छोड़ा है?
वहां भी अल्पतर ही होगा।
हाँ, वहां भी अल्पतर ही होगा। विनोद भाई, हाँ हमेशा नहीं पाए जाएंगे। उपशम सम्यक दृष्टि भी हमेशा नहीं पाया जाता है। सामान्य उन्होंने समय दृष्टि लिया, क्षायिक समय दृष्टि लिया, वेदक समय दृष्टि लिया, उपशम सम्यक तो भी सांतर मार्गणा है। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले भी सांतर होते हैं, सत्ता वाले हैं ना यहाँ पर, तो सांतर में चले जाते हो। मोहनी की सत्ता की अपेक्षा बात करनी है अपने, वो कषाय वाले भी है ना 11वां गुणस्थान में, 24 की सत्ता वाले है वहां पर, उनका भी घटता चला जाता है फिर, परंतु वो मार्गणा ही नहीं रहेगी तो सवाल ही
नहीं।
हाँ, ये सारे उपशम सम्यक तो ये सांतर मार्गणा है, इसमें प्रथम उपशम भी लेना। अब एकेंद्रियों में सब प्रकृतियों के सब पद वाले जीव नियम से हैं, एकेंद्रियों के योग्य सब पद वाले, ऐसा लेना है, मार्गणा की बात है ना। नहीं तो आप कहेंगे सब पद वाले और सब जीव है, तो आप अनंतानुबंधी के भी अवक्तव्य की बात करेंगे तो इनके होता ही नहीं। इनमें जितने पॉसिबल है वो सब होते हैं और वो हमेशा होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, अब सबको एक साथ लेना, मिथ्यात्व को भी, 16 कषाय और 9 कषाय को, अल्पतर भी होगा, भुजगार भी होगा, अवस्थित भी होगा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व वाले अल्पतर होगा। इसी प्रकार बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त। देखो पांचों के पर्याप्त उनको छोड़ा है, अग्निकायिक कौमा देना, बादर अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति और उनके पर्याप्त अपर्याप्त। सूक्ष्म में तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लिया और बादर में जनरल तो रखा, परंतु बादर पर्याप्त उनको छोड़ा पांचों को ही, बादर निगोद और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, निगोदों को तो दोनों ही इसमें लिया, पर्याप्त को भी और अपर्याप्त को भी, सूक्ष्म निगोद और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। इसी प्रकार ने सब पद वाले जीव नियम से है, ये कथन सब में लागू होगा, किंतु इतनी विशेषता है कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव भजनीय हैं, क्योंकि वो काल छोटा है ना, तो उसमें भजनीय हो गए। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगियों में सब प्रकृतियों का अल्पतर पद भजनीय है, क्यों? सांतर मार्गना है। इसी प्रकार अपगत वेदी, आपके प्रश्न का उत्तर आया, अपगत वेदी को लिया यहाँ पर, अकषायी, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, उपशम सम्य दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, ये सारे ही सांतर मार्गणाएं हैं। विशेषार्थ एकेंद्रियों के वो बराबर करना है, एकेंद्रियों के 28 प्रकृतियों में से जितने जिसके जितने पद संभव है उन पद वाले जीव सर्वदा रहते हैं, अतः यहाँ एक ध्रुव भंग ही होता है। इसी बात के द्योतन करने के लिए, द्योतन करना यानी प्रकाशित करना, बताना यानी यही बात समझाने के लिए, सब प्रकृतियों के सब पद नियम से है यह कहा है। इसी प्रकार मूल में गिनाई गई, वो निगाई गई हो, गिनाई गई निमय से हुआ, नियम से, क्या कहते हैं, इसी प्रकार मूल में गिनाई गई बादर एकेंद्रिय आदि मार्गणाओं में एक ध्रुवपद ही प्राप्त होता है, अतः उनके कथन को एकेंद्रियों के समान कहा। किंतु कार्मण करना कार्यन हुआ, कार्मण का योग और अनाहारक मार्गणा में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव कदाचित पाए जाते हैं और कदाचित नहीं पाए जाते हैं। इसलिए उनमें उक्त प्रकृतियों का अल्पतर पद भजनीय है, यानी होगा तो अल्पतर ही होगा। क्यों
वहाँ पे तो
हाँ
दूसरे पंग हो ही नहीं सकते ना, वहाँ पे तो अल्पतर ही होगा, जो उद्वेलना कर रहा है वो ही आएगा,
अकेले उद्वेलना ही वाले होंगे।
नहीं नहीं सॉरी,
चौथे गुणस्थान वाले भी होंगे ना, कार्मण का योग वाले, तो उनमें भी अल्पतर होगा,
अल्पतर ही होगा। हाँ।
अल्पतर पद भजनीय है, जिससे एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा दो भंग प्राप्त होते हैं। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में सब प्रकृतियों का एक अल्पतर पद ही होता है, फिर भी यह सांतर मार्गणा है, इसलिए इसमें अल्पतर पद को भजनीय कहा। यहाँ भी दो भंग होते हैं, यानी होगा तो एक जीव, होगे तो नाना जीव, ये दो ही भंग है, दोनों ही अध्रुव है और मार्गणा भी सांतर है। मूल में अपगत वेद अगपद क्या हुआ क्या इसको अपगत हाँ तो मूल में अपगत वेद आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें सब प्रकृतियों के अल्पतर पद वाला कदाचित एक जीव और कदाचित नाना जीव होते हैं, अतः उनके कथन को आहारक काय योगियों के समान कहा। होते तो अल्पतर होते हैं, परंतु वो मार्गणा कभी होगी कभी नहीं होगी, और जब होगी तो एक जीव होगा या अनेक जीव होंगे। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय समाप्त हुआ। हाँ जल्दी जल्दी समाप्त हुआ। भागा भागानुगम, देखो दो बातें आती है, एक होता है भागा भाग और एक होता है अल्प बहुत्व। जब भागा भाग है तो सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है ये बताएंगे, और अल्प बहुत्व में सबसे कम कितने हैं, उससे ज्यादा कितने, उससे ज्यादा कितने, कम से अधिक की ओर बताएंगे। तो भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, असंख्यात वे भाग है। जीव कितने हैं? अनंत। ये असंख्यात वे भाग कहाँ, फिर भी उनका प्रमाण कितना है वो प्रमाणानुगम में बताएंगे, यहाँ तो कितने भाग प्रमाण है इतनी बात करेंगे। अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने भाग है, असंख्यात बहु भाग है। अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, संख्यात्वे भाग है। अब इन तीन में अगर आप अल्प बहुत्व जानना चाहते हैं तो सबसे कम कौन सा है?
गुजर वाले सबसे कम है।
भुजगार वाला हाँ, सबसे कम कौन है? असंख्यातवा भाग सबसे छोटा होगा, उसके बाद नहीं, असंख्यात बहुभाग वो बड़ा है ना, अकेला असंख्यातवा भाग ही निकाल दिया है तो दूसरा नंबर पर संख्यातवा भाग रहेगा।
अवस्थित वाले
बराबर है ना, और अवस्थित वाले असंख्यात बहुभाग है।
अवस्थित वाले सेकंड नंबर पे आएंगे।
सॉरी वो संख्यात नहीं, मुझे असंख्यात बहुभाग वाला कहना था, वो अल्पदर वाले हैं, यानी पहले नंबर पर अल्प में भुजगार वाले हो गए, सेकंड नंबर पर अवस्थित वाले जो संख्यात विभाग है, फिर वो हम देखेंगे आगे अल्पतर में, यहाँ तो नंबरिंग नहीं लगाना है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, किंतु इतनी नहीं विशेषता है, यानी उनमें भी जो ये तो तीन जो है ना, भुजगार अल्पतर और अवस्थित, उनका तो प्रमाण ऐसा ही होगा, परंतु अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले जीव अनंत वे भाग है। हाँ बहुत ही कम, क्योंकि हमने देखा ना उसमें भी वो हो गए तो हो गए, एक भी होगा ज्यादा भी हो गए। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है,
ये
तो असंख्यात बहुभाग है। तथा शेष पद वाले असंख्यात वे भाग है। जब असंख्यात बहुभाग कहेंगे तो इनकी सत्ता वाले जीवों में से लेना,
असंख्यात से असंख्यात,
नहीं तो वो तो अनंत हो जाएंगे। ख्याल है ना, सत्ता वाले असंख्यात होते हैं, तो उनमें से बहुभागों में तो अल्पतर वाले ही होंगे। इसी प्रकार तिर्यंच कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि तीन लेशा वाले भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। ये जो ओग की अपेक्षा जो बताया है वो कहाँ कहाँ घटित होता है वो सारे उन्होंने बता दिए यहाँ पर। आदेश
पीत और पद्म को छोड़ा वहाँ पे ये प्रपोर्शन अलग हो जाएगा।
हाँ, क्योंकि यहाँ जो अनंत में असंख्यात भाग संख्यात भाग वगैरह जो टोटल अनंत जीवों की बात यहाँ की थी, सब जीवों के
सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में भी देखा,
वो अनंत जीव तो वहाँ भी ले लिए, परंतु सम्यक तो की सत्ता वालों में लिए। अब यहाँ क्या लेना है, अभी आदेश में लेना है। आदेश की अपेक्षा नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति भक्ति वाले असंख्यात विभाग है। वहां टोटल अनंत जीव लिए थे तो अनंत विभाग कहा था, अब टोटल जीव असंख्यात है उसका असंख्यात विभाग। देखो नारकियों में मान लेते हम 10 जीव है, उसको भी असंख्यात भाग कहेंगे, और वहां ओग में भी मान लेते 10 जीव हैं तो भी उसको अनंत भाग कहेंगे, क्योंकि टोटल जीव अनंत थे और यहाँ टोटल नारकी है वो असंख्यात है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, सामान्य देव, जहां जहां वो असंख्यात वा भाग वगैरह घटित होता है, जिनकी संख्या असंख्यात है, ऐसे लिए यहाँ पर भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव, पंचेंद्रिय प के ऊपर बिंदी लगाना, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैकृत काय योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, चक्षु दर्शन वाले, पीत लेशा वाले, पद्म लेशा वाले और संगी जीवों के जानना चाहिए। जहां क्योंकि अलग छोड़ा हमने, जैसे पहले छोड़े थे उनमें अलग अलग घटित होता है ना, वो मार्गणा यहाँ छोड़ दी है, जैसे अपर्याप्तों की वगैरह मार्गणा छोड़ दी है, यहाँ वो असंख्यात वाले लिए हैं जिनमें ये सब दोनों ही घटित होते हैं। यानी जिनमें अनंत अनुबंधी का वक्तव्य भी घटित होता है, ऐसी मार्गणाएं ली है यहाँ पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में छब्बीस प्रकृतियों की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनके अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद नहीं है। देखो नारकियों में भी और आदि ओग में भी सामान्य कथन तो ऐसा ही आया था। ओग में भी देखो जरा भागा 55 पेज पर नीचे से पांचवी लाइन, उसमें क्या कहा था, मिथ्या तो 12 कषाय 9 कषाय के भुजगार स्थिति भक्ति वाले कितने भाग है, असंख्यातवे भाग है। नारकियों में भी कहा असंख्यातवे भाग है, परंतु वहां अनंत का असंख्यातवा भाग था, नारकी में असंख्यात का असंख्यातवा भाग होगा, परंतु कथन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब कहते पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में भी ऐसा ही कथन है, वो है तो जो असंख्यात, उसके कितने भाग प्रमाण है, तो असंख्यात वे भाग प्रमाण है। हाँ देखो ये 56 पेज पर आते हैं, फिर 106 नंबर का पॉइंट दूसरी लाइन, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भागा भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दोनों प्रकृतियों का एक अल्पतर पद है। भागा भाग कब कहेंगे, जब हमें उसका प्रोपोर्शन बताना है, दो पॉसिबल पद हो गए तो उसमें कौन सा बड़ा कौन सा कम उसको कहेंगे, तो यहाँ एकमात्र अल्पतर ही होता है, तो इसमें भागा भाग नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सब एकेंद्रिय सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त सब पांचों स्थावर काय, त्रस अपर्याप्त, स्थावर काय के बाद कॉमा लगाना, अवदारिक मिश्र काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, असंग्य और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। मैंने भागा भाग तो बताया, इसमें तो मनुष्य अपर्याप्त वैकृत मिश्र का योग वगैरह तो सांतर मार्गणा होते हुए भी जब उनमें होगे तो उसका प्रमाण वही होगा जो अभी बताया। सामान्य मनुष्यों में सामान्य नारकियों के समान जानना चाहिए। सामान्य मनुष्य कहते तो उनकी भी संख्या असंख्यात है, तो वहां नारकियों के समान असंख्यात पे भाग ऐसा कथन घटित होगा। हमने देखा था ना भुजगार वाले असंख्यात वे भाग होते हैं, ऐसा देखा था हमने, और अल्पतर वाले असंख्यात बहुभाग होते हैं, ऐसा भी देखा था। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है जहां असंख्यात वा भाग कहा वहां संख्यात वा भाग कर लेना चाहिए, और जहां असंख्यात बहुभाग कहा वहां संख्यात बहुभाग कहेंगे। आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, तो असंख्यात बहुभाग है। तथा अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात वे भाग है। यानी असंख्यात बहुभाग इसलिए कहा वहां की मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, उनका अल्पतर तो चलता ही रहेगा, मतलब कुछ जीवों का उसमें तो अवक्तव्य भी भंग होगा। सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व का कथन ओग के समान है, शेष प्रकृतियों की अपेक्षा भागा भाग नहीं है, क्योंकि वहां तो अल्पतर ही भंग होता है उसमें। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वाले जीवों में जानना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सब प्रकृतियों की अपेक्षा भागा भाग नहीं है। क्यों नहीं है?
ये शुक्ल लेशा वाले में भागा भाग होगा क्योंकि वहाँ पे तो एक ही पद है ना, अल्पतर वाला। खाली अनंतानुबंधी।
हाँ, परंतु शुक्ल लेशा में अनंतानुबंधी में अल्पतर भी होगा और अवक्तव्य भी होगा। हो सकता है ना शुक्ल लेशा में? क्या कहा? विषय योजना करेंगे वहां पर
असंख्यात बाबा।
हाँ, तो शुक्ल लेशा वाले अकेले देव में ही होते ऐसा नहीं है?
नहीं, सभी गति में, नहीं तीन गति में होते।
हाँ, मनुष्य तीर्यंचर देव। हाँ, इसी प्रकार आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, अकषायी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भागा भाग नहीं है। क्यों नहीं है? एक अल्पतर ही होता है, अन्य नहीं। अभव्यों में 26 प्रकृतियों का भंग मत्य ज्ञानियों के समान है। मत्य ज्ञानियों में क्या देखा हमने? भुजगार भी होगा, अल्पतर भी होगा, अवस्थित भी होगा। मत्य ज्ञानी में हमने यहाँ लिया था ना
संख्यात बहुभाग। संख्यात बहुभाग।
ये मत्य ज्ञानी वाली मार्गणा कहाँ लिखी उन्होंने? पर्याप्त जैसा ना। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी समान जानना चाहिए। और वहां भी लिखा उन्होंने
वो
केवल वो अवक्तव्य वाला नहीं है, बाकी तो वो के जैसा ही कहा उन्होंने। इस प्रकार भागा भागानुगम समाप्त हुआ। अब जो भागा भाग देखा उसी में प्रमाण कितना है। भले असंख्यात्वा भाग कहा तो अनंत का असंख्यात्वा भाग करेंगे वो भी अनंत हो जाएगा, उसका प्रमाण यहाँ बताएंगे। ओघ और आदेश की अपेक्षा परिमाणानुगम दो प्रकार का है। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौनों कषाय की अपेक्षा तीन पद वाले जीव कितने हैं? तो अनंत है। उस अनंत में से भुजगार वाले असंख्यात वे भाग कहे थे, अल्पतर वाले असंख्यात बहुभाग कहे थे, है ना, और अवस्थित वाले संख्यात वे भाग कहे थे। परंतु तीनों का प्रमाण है तो अनंत। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव असंख्यात है। यह अधिक से अधिक हो सकेंगे तो कितने तो असंख्यात कहे।
असंख्यात
अवक्तव्य वाले यानी विषय योजना के बाद संयोजना करने वाले, मिथ्यात्व में आने वाले लिए। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के सब पद वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं, क्योंकि उनके होते ही असंख्यात है। संगी पंचेंद्रियों में से ही वो सम्यक वाले हो गए, अल्पतर वाले भले वो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि, उनकी सत्ता वाले जीव असंख्यात ही हो गए। इसी प्रकार तिर्यंच काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुसक वेद वाले, ये जो अनंत का जहाँ घटित होता है ना, यही कथन जहाँ घटित होगा वो मार्गणाए लिए है, जिसमें वो अनंत पद घटित होगा। जैसे तिरियंच कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत, अचक्षु, चक्षु करना, अचक्षु क्ष के नीचे उकार, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि तीन लेशा वाले, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि इसमें सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व उसके अनंतानुबंधी उनके लिए है, अवक्तव्य भी लिए और इनकी सत्ता वाले भी लिए हैं, इसलिए भव्यों को लिया यहाँ पर। आगे का होगा क्या, कल करेंगे, रुकेंगे यहीं पर।
कृष्णादी तीन लेशिया वाले में भी अनंतानुबंधी का वक्तव्य वाला हो जाए,
किसमें किसमें?
कृष्णादी तीन लेशिया वाले,
हाँ कृष्णादी तीन लेशिया वालों में होगा, परंतु वहाँ
अच्छा वो नारके की अपेक्षा,
हाँ वो केवल नारकियों की अपेक्षा रह जाएगी, परंतु इनमें ये अनंत वाला भंग जो है समय समय मिथ्यात्व का वो सब नहीं घटित होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन।